115वीं कारिका है, अंतःकरण तत्त्वस्य वायुराश्रयतांगतः तद्धर्मेण समाविष्टस्तेजसेव विवर्तते। शब्दत्व की जो प्राप्ति होती है, ज्ञान शब्द बन जाता है पातंजल मत में, उसी बात को बता रहे हैं कि अंतःकरण तत्त्वस्य, अंतःकरण का जो तत्व है, अंतःकरण का तत्व मतलब अंतःकरणत्व, तो अंतःकरणत्व का आश्रय वायु होती है, क्योंकि अंतःकरण वायु पर आश्रित होकर के ही मुख के द्वारा वैखरी के रूप में, शब्द के रूप में उच्चारित होता है। इसीलिए कहा कि अंतःकरण तत्त्वस्य वायु आश्रयतांगतः, वायु जो है वह आश्रयता को गत मतलब प्राप्त हो जाती है। किसकी आश्रयता को प्राप्त होती है? तो अंतःकरण तत्व के आश्रयता की, आश्रित और आश्रय, तो आश्रित है यहाँ पर अंतःकरण तत्व और आश्रय है यहाँ पर वायु। वायु से किसको लेना है? तो प्राण वायु को लेना है। तो अंतःकरण जो है वह वायु रूपी आश्रय पर आश्रित रहता है, और वायु मतलब प्राण वायु। तद्धर्मेण समाविष्ट, तद्धर्मेण अर्थात अंतःकरण धर्मेण, अंतःकरण के धर्म से। अब अंतःकरण का धर्म जो यहाँ बताया गया, उसे किसको लेना है? तो सूक्ष्म शब्द है ना, अपनी ओर से जोड़ लीजिए, तो तद्धर्मेण का अर्थ हो गया अंतःकरण धर्मेण सूक्ष्म शब्द है ना, अंतःकरण का धर्म जो है सूक्ष्म शब्द, उसके साथ समाविष्ट, उसके साथ समाविष्ट होता है। समाविष्ट होता है मतलब युक्त होता है। तेज से व विवर्तते, तेजसा एव, तेजसा मतलब अग्नि ना, कौन सी अग्नि लेनी है? जठराग्नि लेनी है। तो तेजसा एव अर्थात जठराग्निना एव, माने जठराग्नि के साथ विवर्तते, विवर्तते मतलब भासित होता है। थोड़ा सा और अगर स्पष्ट करें तो श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ग्रहण होने योग्य शब्दत्व को प्राप्त करता है। विवर्तते का शाब्दिक अर्थ तो हो गया भासते, लेकिन अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ये कह सकते हैं कि श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यतया शब्दत्वम लभते। तो क्या हुआ कि अंतःकरण तत्व जो है वह आश्रित है, वायु प्राण वायु जो है वह उसका आश्रय है, और वह प्राण वायु अंतःकरण का जो धर्म है सूक्ष्म शब्द, उससे समाविष्ट होता है, और समाविष्ट होने के बाद जठराग्नि के द्वारा वह श्रोत्रेंद्रिय ग्रहण योग्य शब्दत्व को प्राप्त करता है। 116वीं कारिका देखें, विभज्य स्वात्मनो ग्रंथीन श्रुति रूपेह पृथग विधेह प्राणो वर्णान अभिव्यज्य वर्णेषु एव उपलीयते। शब्द जो है किस रूप से बाहर निकलता है, इस बात को इस कारिका में कहा गया। कहा कि प्राण दूसरी पंक्ति में है ना, प्राणो वर्णान अभिव्यज्य, तो प्राण माने प्राण वायु, प्राण वायु जो है वह स्वात्मनो ग्रंथीन विभज्य। स्वात्मन का अर्थ करेंगे स्वकीयस्य रूपस्य, प्राण वायु जो है वह स्वात्मा का विभाजन करके, स्वात्मा अर्थात स्वकीय रूप का विभाजन करके विभज्य। ग्रंथीन है नहीं, स्वात्मनो ग्रंथीन विभज्य, माने स्वकीय रूप की जो ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों को विभज्य माने विभक्त करके विभाजित करके। अब ग्रंथि से किसको लेना है यहाँ पर, तो क ख ग घ आदि वर्ण जो है वही यहाँ पर ग्रंथि है। तो प्राण वायु जो है वह अपने स्वरूप के ग्रंथियों को विभक्त करके अर्थात ककारादि वर्णों के रूप में अपने को विभक्त करके श्रुति रूपे पृथग विधेयः, पृथग विधेयः माने नाना प्रकार है, अश्रुति रूपे माने क ख ग घ इत्यादि रूपे है। तो नाना प्रकार से श्रुति रूप के द्वारा अर्थात क ख ग घ इत्यादि रूप के द्वारा वर्णान अभिव्यज्य, अभिव्यज्य माने प्रकाश्य प्रकाशयित्वा माने वर्णों को प्रकाशित करके, और फिर वर्णेषु एव उपलीयते वर्णों को प्रकाशित करके वह प्राणवायु जो है वह वर्णेषु एव वर्णों में ही वह प्राणवायु लीन हो जाती है, मतलब वह वर्ण रूप ही बन जाती है प्राणवायु। तो प्राणवायु ही जो है वह अपने स्वरूप को जो है ना विभक्त करती है, और विभक्त करके वर्ण के रूप में उसे प्रकाशित करके और उन्हीं वर्णों में वह विलीन हो जाती है, ऐसा 116वीं कारिका में बताया गया। अब 117वीं कारिका में है अजस्त्र वृत्तिर यह शब्द सूक्ष्मत्वाच्च उपलभ्यते व्यंजनाद वायुरिव स स्वनिमित्तात् प्रतीयते। कहा कि शब्द जो है वह नित्य है, हमेशा रहने वाला है, तो हमेशा उसकी प्रतीति क्यों नहीं होती है। तो इसका उत्तर इसमें है कि अजस्र वृत्ति ही यह शब्द, अजस्र का मतलब होता है सतत और वृत्ति का अर्थ करेंगे सत्ता। तो जिसकी अजस्र सत्ता है, जिसकी सतत सत्ता है, ऐसा जो शब्द, उस शब्द को कहते हैं अजस्र वृत्ति ही यह शब्द। एक शब्द में अर्थ करें अजस्र वृत्ति का, तो सदा वर्तमान, हाँ जो हमेशा वर्तमान रहे, हमेशा विद्यमान रहे, ऐसा जो शब्द है वह सूक्ष्मत्वाच्च उपलभ्यते, वह शब्द सूक्ष्मत्वात् माने सूक्ष्म रूप से उपलब्ध रहता है हर जगह। किंतु जैसे हवा हर जगह है, लेकिन जब हम पंखा झलते हैं तभी जो है वह हवा जो है ना हमें महसूस होती है, उसी तरह से शब्द सूक्ष्मतया तो सर्वत्र रहता है, लेकिन जब उसको उच्चारण स्थान करण प्रयत्न के द्वारा जो है ना उच्चारित करते हैं तभी वह सुनाई देता है। वही कहा कि व्यंजनात वायु इव, जैसे वायु का व्यंजन होता है पंखा आदि के द्वारा, होती तो वायु सर्वत्र है लेकिन वह महसूस नहीं होती है, लेकिन व्यंजन होने से माने उसको पंखा को झलने से वायु की प्रतीति होना शुरू होती है, उसी तरह से स्वनिमित्तात् प्रतीयते, इसी तरह से शब्द जो है अपने निमित्त के द्वारा, स्वनिमित्तात् अपने निमित्त के द्वारा, शब्द का निमित्त क्या होता है, स्थान प्रयत्न आदि होता है, तो अपने निमित्त स्थान प्रयत्न आदि के द्वारा वह शब्द प्रतीत होता है, प्रतीति का विषय बनता है। 118वीं कारिका तस्य प्राणे च या शक्ति ही या च बुद्धो व्यवस्थिता विवर्तमाना स्थानेषु सैषा भेदम प्रपद्यते। इसमें तस्य जो है उसका अर्थ करेंगे तस्य अर्थात शब्दस्य, तो शब्द का प्राणे, प्राणे माने प्राणवायु, कि प्राणवायु में या शक्ति ही जो शक्ति रहती है, शब्द की प्राणवायु में जो शक्ति रहती है, और याच बुद्धो व्यवस्थिता और जो शक्ति बुद्धि में अर्थात अंतःकरण में व्यवस्थित होती है अर्थात विद्यमान होती है, तो दो शक्तियों की बात की गई यहाँ, एक प्राण में रहने वाली शक्ति और एक बुद्धि में रहने वाली शक्ति। तो शब्द की प्राण में रहने वाली शक्ति और बुद्धि में रहने वाली जो शक्ति है वही शक्ति प्राण शक्ति के सहयोग से क्या होता है, तो स्थानेषु स्थाने सु माने तालु आदि सु, तालु आदि उच्चारण स्थानों में विवर्तमाना माने वर्णादि रूपेण प्रतिभासमाना, वर्ण आदि के रूप में प्रतिभासित होते हुए भेदम अर्थात कादि ककार खकार आदि भेदम, ककार खकार आदि भेद को प्रतिपद्यते माने प्राप्नो, प्रपद्यते माने प्राप्नोति, ककार खकार आदि भेद को प्राप्त करता है। तो शब्द की शक्ति जो है प्राण में रहने वाली शक्ति और बुद्धि में रहने वाली शक्ति, वही शक्तियाँ स्थानेषु माने तालु आदि उच्चारण स्थानों में विवर्तित होकर के ककार वर्ण के रूप में प्रतिभासित होकर के ककार खकार आदि भेद को प्राप्त करती है। अब 119वीं कारिका में है, शब्देषु एव आश्रिता शक्ति विश्वस्यास्य निबंधिनी यन्नेत्रः प्रतिभात्मायं भेद रूपः प्रतीयते। अब शब्द शक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि शब्देषु एव शक्ति आश्रिता, शब्दों में ही जो है ना वह शक्ति रहती है। कौन सी शक्ति रहती है? तो विश्वस्यास्य निबंधिनी, विश्व की जो निबंधिनी शक्ति है, निबंधिनी माने कारण शक्ति है, माने जिस कारण शक्ति से इस विश्व का निर्माण होता है, इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है, तो ऐसी जो शक्ति है वह शब्देषु एव आश्रिता, वह शब्दों में ही शक्ति आश्रित होती है। यन्नेत्रः प्रतिभात्मायं भेद रूपः प्रतीयते, और वही जो शब्द शक्ति है वह नेत्र है, नेत्र है अर्थात ज्ञापक है, बोधक है। शब्द ही जो है ना सबका बोधक होता है, तो बोधक होने के जैसे आँख से आँख के द्वारा सबको देखते हैं तो आँख बोधक होती है ना, उसी तरह से आँख की तरह शब्द जो है इस पूरे विश्व की, पूरे विश्व का बोधक होता है। प्रतिभात्मायं भेद रूपः प्रतीयते, अयम भेद रूपः संसारः प्रतीयते, यह जो भेद रूप संसार है, भेद रूप संसार माने सांसारिक जो व्यवहार होता है, जैसे गाम आनय गाम नय, इस तरह जलम आनय, इस तरह का जो भी व्यवहार होता है वह शब्द सब शब्द के कारण ही होता है। यहाँ पर एक शब्द है प्रतिभात्मायं, अयम प्रतिभा आत्मा, प्रतिभात्मा, तो प्रतिभात्मा का अर्थ करना है अनादि वासनात्मक, ऐसी वासना जो अनादि काल से रहती हो उसको कहते हैं अनादि वासना। तो यह जो संसार है यह अनादि वासना के कारण ही निर्मित होता है। तो इस अनादि वासनात्मक जो यह संसार है और संस्कार का व्यवहार है, वह सारा का सारा व्यवहार शब्द पर ही आश्रित होता है, बिना शब्द के जो है व्यवहार नहीं हो सकता। इसके बाद 120वीं कारिका पढ़ते हैं, सर्जादि भेद शब्देन व्याख्यातो रूप्यते यतः तस्मादर्थ विधा सर्वा शब्द मात्रा सुनिश्चिता। अब शब्द का ही अभी वर्णन चल रहा है, कहा कि सर्ज आदि जो भेद होते हैं, ये सर्ज आदि भेद क्या है? तो संगीत में आपने सुना होगा कि सप्त स्वर होते हैं, सात स्वर होते हैं, और उन सातों स्वरों का जो है ना नाम होता है निषाद, ऋषभ, गांधार, सर्ज, मध्यम, धैवत, और अंतिम होता है सातवां पंचम। तो ये जो सात स्वर हैं, निषाद स्वर, ऋषभ स्वर, गांधार स्वर, सर्ज स्वर, मध्यम स्वर, धैवत स्वर और पंचम स्वर, इन्हीं सातों स्वरों के लिए कारिका में कहा गया सर्ज आदि भेद है, कि सर्ज आदि जो स्वर के भेद हैं, सातों भेद हैं, वो शब्देन व्याख्यातो रूप्यते यतः, वो सारे के सारे भेद शब्द के द्वारा ही व्याख्यात होते हैं। गुरु जो सिखाता है शिष्य को सप्त स्वर, कैसे सिखाता है? शब्द के द्वारा ही सिखाता है। तो यही कहता है कि शब्देन व्याख्यातः, शब्द से ही व्याख्यात होता है वो सप्तस्वर। रूप्यते जता, और उसका रूप्यते मतलब वर्ण्यते, उसका वर्णन भी जो है ना शब्द के द्वारा ही किया जाता है। तस्मात अर्थ विधा सर्वाः, इसीलिए सबका सब जो है ना जितने भी अर्थ हैं वो सब के साथ अर्थ शब्द मात्रा सुनिश्चिता, वो शब्द के द्वारा ही सुनिश्चित होते हैं। अगर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए तो कोई भी अर्थ जो है सुनिश्चित नहीं होगा। इस तरह से आज का पाठ यहीं पर हम ब्रेक करते हैं।